एवं शांति। 16 अक्टूबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से सवेरे भी शाम को भी रोजाना जुड़ सकते हैं, एक ही लिंक है। आपका कोई प्रश्न है या आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करके आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं और लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई आपके मन में हमारे प्रति कोई शुभ भावना शुभ संकल्प शुभ विचार है तो वो भी आप भेजकर हमें लाभ पहुंचा सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा करते मीठे बच्चे तुम माता पिता के सम्मुख आए हो। कौन है माँ?
ब्रह्मा बाबा,
सबसे बड़ी माँ ब्रह्मा, बड़ी माँ, और पिता है हमारा शिव बाबा। अपार सुख पाने के लिए बाप तुम्हें घनेरे दुख से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते। कहां से निकालते हैं? घनेरे दुखों से। हमने बुलाया बाबा को, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा कहते जब तुम घनेरे दुखों में फंस जाते हो तो मैं आकर तुम्हें घनेरे दुखों से निकालकर कहां ले जाता हूं? कितने सुखों में? घनेरे सुखों में। घनेरे दुखों से निकालकर घनेरे सुखों में ले जाता हूं। आपके बुलाने पर मैं हाजिर हुआ हूं। ठीक है? हाँ मक्खन, बिल्कुल मक्खन। हाँ टाइम पर आता तुम्हारे बुलाने को जी चाहता। प्रश्न आता नहीं है। एक बात, क्योंकि भगत बच्चों को खुश करना होता है ना, फिर सच तो बताना ही आखिर। प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते। जितनी भी आत्माएं हैं उनमें से एक बाप ही ऐसी आत्मा है जो रिजर्व में रहता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है। क्यों? क्यों नहीं लेता? सारे जन्म लेते हैं, ये क्यों जन्म नहीं लेता? पार्ट तो नहीं है। ये रिजर्व में क्यों रहा? क्या कारण है? ये रिजर्व में है, हैं जी? रिजर्व तो ना, जैसे भी ये तो खर्च करने ही नहीं है, ऐसा पैसा जो ये कभी खर्च नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, क्या कारण है? क्यों रिजर्व में रह गया अपने पास? वो अपने गुण और शक्तियों को क्यों क्षय नहीं करता? हाँ जी, तो बाबा कहते बच्चे क्योंकि कोई तो तुम्हें इस तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला चाहिए। यदि मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं तो फिर कोई एक और चाहिए जो हमें इस चक्कर से निकाले। साइंस का थर्मोडायनेमिक लॉ है, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती। एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, ठीक है क्या नहीं? केवल उसका रूप बदल जाता है। जैसे हमने पेट्रोलियम को जलाया, हमने लकड़ी को जलाया, किसी भी चीज को हमने कंज्यूम किया, है ना, वो पॉल्यूशन में बदल गया। हमने पेट्रोल जलाया, उससे पॉल्यूशन बना, मतलब वो जल करके जल नष्ट होना नहीं, जैसे पानी है उसको हमने जला दिया, पानी नष्ट होना नहीं, उसने भाप बन करके कहीं ना कहीं चले जाना है, फिर जहां उसको ठंडा वातावरण मिलेगा वो पानी बन जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह पेट्रोलियम को हमने चलाया, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो प्रदूषण के रूप में वातावरण में चला जाता है। अब उसे यदि वापिस हम पेट्रोलियम में लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और एनर्जी चाहिए, एक और एनर्जी चाहिए जिसके द्वारा उसे हम परिवर्तन करें। जैसे पानी को ठंडा करने के लिए ठंड एक एनर्जी है जो भाप को पानी बना सकती है, ऐसे एक और चीज चाहिए जिसके द्वारा हम उसे वापस पेट्रोलियम में ला सके। तो उसके लिए परमात्मा ने इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर उस एनर्जी को भी बनाया हुआ है, और इतना बड़ा पोल्यूशन हो गया है, इतना बड़ा पोल्यूशन हो गया है जो ओजोन लेयर तक सारे आकाश में बढ़ता जा रहा है, जितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उतनी हमारी ओजोन लेयर जो हमारी रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेस जो बाहर से आती हैं, सूर्य से आती हैं, दूसरी तरफ से आती हैं, उनको छान करके यहाँ भेजती है जिससे हमारा शरीर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। वो गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, वो छिद्र बड़े होते जा रहे हैं, वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे लिए हानिकारक है वो आना शुरू हो गए हैं, जिससे हमें अनेक बीमारियां होना शुरू हो गई। तो उनसे बचाने के लिए ये नियम रखा गया है कि सारे इतने बड़े बॉम्ब्स, इतने बड़े मिसाइल्स बनाए गए ताकि सारा भी सारा का सारा पानी स्टीम बन करके ऊपर जाए और उसको घोल कर नीचे ले आए, क्योंकि जितना भी पॉल्यूशन है वो कार्बन ग्रुप का है और वो पानी स्टीम में ही घुल सकता है। अब इतने आकाश तक स्टीम कैसे पहुंचाई जाए, प्यार से तो जाने वाली नहीं, प्यार से तो हम भेज नहीं सकते ना, इतने भाप बना नहीं सकते, तो फिर हम सारे पानी को स्टीम बना देंगे और स्टीम जो है ओजोन लेयर तक जाएगी और वहां से सारा कार्बन ग्रुप का जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसमें मिक्स होकर के वापस इस जमीन पर आ जाएगा और वापस आकर के वो फिर धरती में फिर से स्टोर हो जाएगा अगले कल्प में यूज होने के लिए। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे एक अलग चाहिए, वो मैं है जो हर कल्प आकर तुम सबको पतित से पावन बनाने के लिए रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है कहने। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। कितना बड़ा त्याग करता है, हमारी तरह शरीर को भोगता नहीं, मिठाइयां अच्छी अच्छी चीजें जो आप खाते हो वो खाता नहीं, वो आकर किसी पर राज्य करता नहीं। आप 5000 साल या 4999 साल तक इस संसार के एंजॉय करते, वो एंजॉय करने के लिए नहीं, कितना त्याग करता है, 100 साल के लिए भी आता है तो हम सबको पतित से पावन बनाने के लिए, फिर से उन सारे सुखों को लेने के लिए तैयार करता, कितना बड़ा त्याग है। कर सकता है कोई त्याग, कोई आत्मा तैयार है बाबा के साथ सीट चेंज करने के लिए? हाँ जी, ठीक है, तो कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। हम मान लेंगे ना इस बात को, क्यों रिजर्व में रहता है, समझाना है हमने दुनिया को। हमें खुद को समझ में आ जाएगा तो हम सारी दुनिया को समझा सकेंगे। इस बात को हमें बुद्धि में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और पवित्रता का अभाव, अपवित्रता दुख और अशांति को लाने का आधार। जैसे जैसे हमारी पवित्रता कम होती जाती है उतना सुख की जगह दुख आता जाता है, शांति की जगह अशांति आती जाती है। पवित्रता के आगे आ लग गया बस तो मामला गड़बड़ हो गया। पवित्रता गई तो सुख भी गया, शांति भी गई और उसकी जगह उतनी दुख और अशांति आ गई। तो देवता कब तक होते हैं? जब तक पवित्र होते हैं। जैसे जैसे हमारी पवित्रता कम होती जाती है हमारे दिव्य गुण हमारे जीवन से निकलते जाते हैं और हम असुर बनते जाते हैं, अपवित्र बनते जाते हैं और एक दूसरे के लिए कांटे बनते जाते हैं, जंगल बना देते हैं इस सारी दुनिया को। और बाबा आकर हमें कांटे से फूल बनाकर इस जंगल को क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? हाँ जी, फूलों का बगीचा बना देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वो बाप भी है मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख बने रे। सब पुकारते रहते हैं, किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख गनेरे कौन और कब मिले। दुनिया सारी उस परम पिता परमात्मा को पुकारती रहती है, चाहे कहीं भी जाकर बुला रही है, भगवान जी मैं देखो कितनी दूर से आया हूँ, बस का किराया, एयर का किराया, ट्रेन का किराया दे करके और पैदल पैदल आया हूँ, और भी ज्यादा लेट नहीं मार करके आया हूँ। दंड क्या बोलते, दंडोत करते हैं वो, ऐसे लेट करके जाने वो क्या बोलते हैं, हाँ परिक्रमा भी, वो लेट करके नाप नाप करके एक इंच भी नहीं, दंडवत एक बार करते हैं, एक ऐसे पूरा लेट जाते हैं फिर निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर लेट जाते हैं फिर निशान लगाते हैं पैदल, हाँ हाँ पढ़ते रहते हैं उसको, मतलब दंडवत दंडवत बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसी जो, हाँ पिटिया पर करना है जी, दंडवत ही बोलते हैं ना, दंडवत करते हुए जाना, इतनी करके आया हूँ अब तो मेरे ऊपर कृपा कर दे, अब तो मेरे को सुख दे दे, इसलिए जाते हैं ना ताकि मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर दे, देख मैं तेरे पास आया। हाँ ठीक है, जो भी मतलब हर एक अपना अपना इलाके की भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, तो उसी आधार से हमें बात समझ में आ गई है कि इस इतने कष्ट उठा के हे प्रभु जी मैं आपके पास आया हूँ, अब मेरे दुख दूर कर। मेन बात सीधी हमें जो समझ में आ रही है, आता कि उनकी कृपा से हमें सुख गनेरे कब मिलेंगे ये पता नहीं था, कौन देगा हमें ये पता नहीं था, कहाँ है वो देने वाला ये पता नहीं था। हमें किसी ने बताया उस कोने में बैठा है तो हम वहां चले गए, उस कोने में बैठा है तो वहां चले गए, चारों धाम की यात्रा करते फिरते थे इसीलिए ताकि हमारे जीवन से दुख निकल जाए। जोर जोर से पुकारते थे, वहां जाकर घंटे बजा बजा कर पुकारते थे। मुसलमान भाई माइक पर जोर जोर से बोलते हैं, हर एक धर्म हर एक पंथ उस परमात्मा को अपनी अपनी रीति से प्रेयर कर रहा है, पुकार रहा है, आओ आओ आओ। सुख घनेरे किसको कहा जाता है ये भी वो नहीं जानते। जाते थे परंतु ये नहीं जानते वो सुख घनेरे होते क्या है। कमाल की बात तो ये, हम राम राज्य मांगते आए, महात्मा गांधी ने राम राज्य दे दिया, परंतु ये पता ही नहीं कि राम राज्य है क्या, मिला है कि नहीं मिला है, किसको कहा जाता है राम राज्य, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं समझते। अभी तुम यहां सामने बैठे हो, अभी तुम यहां सामने बैठे हो, जानते हो यहां कितने दुख गनेरे, सारी दुनिया में कोई है जो सुखी हो, एक ढूंढ के लाओ जो सुखी हो। बेशक वो बाबा का बच्चा बन गया है, फिर भी जैसे ही बाबा को भूलता है दुख आ जाता है। बाहर खड़ा हुआ है दरवाजे में, एक बार इसका मुंह बाबा से हटे, इसकी नजर परमात्मा से हटे और इसको बताऊं कि मैं क्या, तुरंत आ जाता है, एक सेकंड नहीं लगाता। ये है दुखधाम और वो है सुखधाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं, तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो हम उस परम पिता परम आत्मा मात पिता के सामने बैठे, जिसके सामने बैठे हैं अभी तुम समझते हो, अब तुम्हें समझ में आया है। पहले तो हम मूर्तियों के आगे जाके बैठ जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों के आगे जाकर बैठ जाते हैं, भगवान बस अब आपकी शरण में आ गए, हमें पता ही नहीं था कि ये भगवान नहीं है। और मुसलमानों ने सही कहा कि ये नास्तिक है, उन्होंने गलत नहीं कहा, ये नास्तिक है, ये हिंदू है, ये काफिर है, ये भगवान को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं जानते, वो राइट थे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हैं ये गॉड नहीं है, ये भगवान नहीं है, वो राइट है या नहीं है, परंतु उन्होंने ये लाइन राइट बोली है, वो रॉन्ग है वो एक दूसरी बात है, वो रॉन्ग है दूसरी बात है, परंतु हम रॉन्ग है, हमें 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 स्वीकार करना है, हमें इस बात को स्वीकार करके चेंज करना है। वो रॉन्ग है, वो उनका अपना पार्ट है, वो रॉन्ग है ठीक है, तो हम उन्हें समझा सके कि हाँ वो भी राइट बन सकते हैं, क्योंकि वो जिस गॉड को ढूंढ रहे हैं वो गॉड भी ज्योति है, लाइट है, वो ऐसा नहीं है जो सातवें आसमान पर बैठा रहता है। वो मुसलमान नहीं थे,
मुसलमान
भाई जी वो मुसलमान नहीं थे, भाई जी वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान का मतलब है जो खुदा का कहना माने,
खुदा का कहना मानने वाले नहीं
है, नहीं है। जब वो खुदा का कहना मानने वाले नहीं है वो मुसलमान नहीं है। यदि वो समझ रहे, बात सारी ये होती है कि मुसलमान वो है जो परमात्मा का कहना माने। अब हमें हमारी जरूरत है कि हम उन्हें ये समझा सके कि मुसलमान होता क्या है भाई, जो जो खुदा का कहना माने वो मुसलमान है ना, वो खुदा का कहना मानते ही नहीं है तो वो मुसलमान कैसे हैं जी। हाँ मतलब बात सारी है कि हम खुद भी गलत है तो वो भी गलत है, पर तो बात यहाँ से राइट क्या है वो तो हमें पहचानना है ना, राइट हमें पहचान कर खुद को राइट करना है, फिर उनको भी राइट करना है, और उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। नहीं गवर्नमेंट का भी काम नहीं है, गवर्नमेंट का भी काम नहीं है, ये काम उसका है जिसका ये संसार है, ठेकेदार है ये संसार का। हम क्यों बेकार में बीच में दुखी हो, क्यों दुखी हो, मतलब वो जो कुछ भी उन्होंने किया, जिन लोगों को उन्होंने मारा, जिन लोगों को उन्होंने दुख दिया, वो उनका कार्मिक अकाउंट था, कहानी खत्म, सारी कहानी खत्म। हम ऐसे बाप के पास पढ़ते हैं जहां सारी कहानियां खत्म, उन्होंने करना था ठीक है। आज ये सारे हिसाब किताब बराबर करेंगे ना, आगे चलकर और बढ़ेंगे ना, कम तो ना होने, ये शुरुआत है। अभी समझा नहीं, उसको आग लगती जा रही है ना, ये धीरे धीरे अंदर अंदर बढ़ता जाएगा ना, फिर गली गली में कतलेआम चलेगा, फिर सारे हम घर चलेंगे। अब उस अवस्था तक तो हमको बढ़ना ही पड़ेगा ना। अब इसमें हम दोष सुना दे सकते हैं, हमने खुद मकान गिराने का ऑर्डर दिया है, अब वो मकान गिरेगा, धूल तो उड़ेगी, कंकर पत्थर गिरेंगे, मकान गिरेगा तो मिस्त्री का काम भी चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो जिन्होंने काम करना है बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, उनका काम तो तभी चलेगा ना जब ये मकान गिरेगा। हर एक आत्मा का काम दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ना, हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, वो राइट हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो रही। हाँ, इंतजार कर रहे हैं भाई मकान गिरेगा तो मेरे को कोई काम देगा, नहीं तो इसको काम कौन देगा भाई। हाँ जी,
घर गिराने के काम में भी एक्सपर्ट है।
हाँ, अभी तुम समझते हो हम उस परमपिता परमात्मा के आगे बैठे हैं। कौन है वो परमपिता परमात्मा जिसके आगे बैठे हैं? जानते हो हम इसके जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। जानते हो हम एक दो जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। बाप को भी जान लिया हमने, कमाल कर दिया ना, हमने बाप को भी जान लिया, बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी जान लिया। तो हम पहले गनेरे सुख में थे ये भी पता लग गया, फिर हम गनेरे दुख में आ गए ये भी जान लिया। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कैसे हम सुखी बनते हैं, कैसे फिर हम दुखी बनते हैं, फिर कैसे सुखी बनते हैं। एक एक स्टेप, जरा जरा छोटी छोटी बात हमें मालूम होनी चाहिए। गड़ी गड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। भूलते ही हम क्या करते हैं? मुरझा जाते हैं। जैसे छुई मुई, छुई मुई जानते हैं? छुई मुई छुई मुई मर जाती है तुरंत, देखते ही हाथ लगाते ही हाथ पास जाएगा पहले ही, हाँ पहले ही मर जाती है बेचारी। छुई और मुई, जैसे छुआ और वो मर गई, हाँ अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है, वो हमारी अवस्था हो गई है। बस माया आती है, उंगली लगाती है, ओ माया आ गई, ठीक है चल मर गए, माया के साथ चल देते हैं, चलो कहाँ चलना है। फिर जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो आता है बाबा भी तो आया हुआ है, अच्छा चलो 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 बाबा के पास चलते। वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती। नंबर वार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से, वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। स्वर्ग में भी राजा भी होता है तो रंक भी होता है, गरीब भी होता है। वे गरीब प्रजा, वे साहूकार स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख गनेरे के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख गनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात, मुख्य क्या है? पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी, शांति और सुख खुशी मिल नहीं सकती। शांति और सुख मिल नहीं सकता। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्यों की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को, इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विजन भी इसमें ही पढ़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात, पवित्रता से सुधरी हुई चलन, पवित्रता से सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ जाए, बिगड़ने को क्या कहा जाता है, विकास, बिगड़ने को विकार कहा जाता है, है नहीं? ये हमें याद रखना है। जब हमारी चलन बिगड़ती है, बिगड़ने को ही विकार कहा जाता है, समझना चाहिए। अब हमको फिर से देवता बनना है, देवता बनना है तो सुधरना है, पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो आप पवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर, उनकी मूर्तियों के आगे जाकर, उनके चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, क्योंकि पतित हैं, पवित्रता खत्म कर दी है अपनी। तो जो पवित्र थे उनके आगे जाकर माथा टेकते, मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे ही हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महा शत्रु है, इन पर जीत पहनो, इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। ये काम कैसे शत्रु हो गया हमारा भाई, काम कब शत्रु होता है, किसको याद है कब काम दुश्मन होता है, काम कब हमारा शत्रु होता है, काम कब हमारा दोस्त होता है। देह समझने से काम हमारा शत्रु बन जाता है, आत्मा समझने से काम हमारा मित्र बन जाता है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, जिनको विकार कहा जाता है उन विकारों का कारण है अपने को देह समझना। देह समझते ही ये विकार आ जाता है, आत्मा समझते ही कोई विकार नहीं रहता। आत्मा में कोई विकार नहीं, आत्मा में काम विकार आएगा, काम आएगा तो क्या आएगा, आत्मा में काम आएगा तो क्या आएगा, काम माना इच्छा। आत्मा क्या इच्छा करेगी, रोटी खाने की इच्छा करेगी, मकान बनाने की इच्छा करेगी, पैसा इकट्ठा करने की इच्छा करेगी, हाँ जी, शरीर में आने के कारण ये झूठी दुनिया की झूठी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। आत्मा समझने के बाद शरीर ही नहीं, फिर उसे कोई संसार की दुनिया की कोई कुछ नहीं चाहिए, फिर ना माँ चाहिए, ना बाप चाहिए, ना भाई चाहिए, ना बहन चाहिए, ना पति चाहिए, ना पत्नी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आत्मा में विकार आते हैं, परंतु कब आते हैं, जब वो अपने आप को आत्मा बोलकर देह समझ लेता। और जैसे बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, तुम बच्चे देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा, ये रटवा रहा है रोजाना। और कुछ कर रहा है, लंबी चौड़ी पढ़ाई लेके आओ तो बताओ, बहुत टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाई लेके आओ तो बताओ, बिल्कुल सिंपल सी पढ़ाई लेके आया, एक ही बात उसने रट रखी है, वही रोजाना रटवाता रहता है। और हम इतने मजबूत बच्चे हैं, सिकरे गए हैं, जो उसको सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं दूसरे कान से, ठीक है क्या नहीं,
एक से सुनते दूसरे डाउट हो जाए।
हाँ, यही रटवारा रोजाना आत्मा हो तुम आत्मा हो। परंतु कमाल की बात है क्योंकि आत्मा जितना समझते जाएंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। तुम जब पवित्र सत्व प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथा सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है, इसमें पहली पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। और संपूर्ण निर्विकारी किसको कौन बनेगा? ये शरीर तो बनता नहीं है, बनना तो आत्मा नहीं है। उसमें कोई भी विकार ना रहे, उसमें से सारे विकार निकाल कर बाहर फेंक दो। ये तो गायन है, ये है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं, सारी दुनिया की तगड़े किसी बात पर है? इसी पवित्रता की बात पर है। लव जिहाद क्या है? ये जितने मर्डर हो रहे हैं क्या है? भ्रष्टाचार हो रहा है क्या है? अपवित्रता। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी गायी हुई है, तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में ये देवता थे, बस सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सत्व प्रदान, कोई भी खामी वहां होती नहीं। वहां पर कोई भी खामी, कोई भी कमी नहीं होती जब हम सत्व प्रदान होते हैं। क्योंकि हम अपने को क्या समझते हैं? हम आत्मा हैं। कोई भी खामी नहीं होती, हर चीज परफेक्ट होती है। सतयुग में हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी वो क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है। हाथ नहीं लगाता है, तरीका बता देता है, सारी आत्माएं परफेक्ट बन जाती है। क्या वंडरफुल ड्रामा है। तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। ये मुसाफिर तो एवर गोरा है। कौन सा मुसाफिर एवर गोरा है? शिव बाबा। सदा के लिए एकदम परमानेंट वाइट पवित्र, जिसमें जरा भी कमी, जो तुमको भी आकर सांवरे से गोरा बनाता है। इतना आकर्षण है इसमें कि हम उसके आकर्षण में आकर उसकी पवित्रता को देखकर हम भी क्या बन जाते हैं? पवित्र बन समझ जाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी वह होती है, खूबसूरत बनने की दरकार नहीं रहती। वहां ये लाल पीले नीले रंग चेहरे पर चिपकाए नहीं जाते। सत्व प्रदान होते ही हैं खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते। नाम ही है श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता ना सकता। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता सिवाय बाप, जब तक आकर ना समझा। सिवाय बाप के, भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वो और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे, कोई नहीं सुना सकेंगे। चित्रों में सुदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है, बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। सुदर्शन चक्र की देवताओं को तो दरकार ही नहीं है, वो क्या करेंगे? शंख आदि सुदर्शन चक्रधारी, तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलना भी अच्छी चाहिए, चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो, अपनी चलन का वर्णन करते हो ना। परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं, सुधारने वाला और है, वो शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंस। ये शिव बाबा की महिमा नहीं है। शिव बाबा की महिमा अलग है। क्या अंतर है शिव बाबा की महिमा में और हमारी महिमा में? देवताओं को तो ये कहेंगे सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव बाबा को क्या कहेंगे? शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। उसके पास जो कुछ भी है वो अथाह है, जितना कोई लेना चाहे ले ले। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। तुम्हारी आत्मा क्या कर रही है? पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर ये शरीर पतित नहीं रहेगा, ये शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सत्व प्रधान हो। नई दुनिया में हर चीज सत्व प्रधान होती है। अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। ये सारे तत्व क्या करते हैं? तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं, ये है नेचुरल आपदा। ये क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज। वे बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वे भी ड्रामा में नूंद है। इनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, इनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। वे तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, अर्थ विवेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं। अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है। पृथ्वी से क्या होती है? हल्काई होती है। तुम हाँ जी मनुष्यों को हाँ भाई मनुष्य ने बिगाड़ी है, मनुष्य ने फिर सुधारनी है। बाबा ने यही एक रास्ता बनाया हुआ है कि हम मनुष्य इस प्रकृति को बिगाड़ते हैं, बाबा आकर हमें सुधारते हैं, हमारे सुधरने से प्रकृति भी सुधर जाती है। कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं? कितना हल्का बनाते हैं? कितना वजन था हमारे ऊपर? वजन कैसे आता है हमारे ऊपर, कौन बताएगा? वजन कैसे आता है, कैसे पता लगा? देह समझने से वजन कैसे आ गया? जब हम समझते हैं अपने आप को आत्मा, वजन है जीरो। जैसे कहा मेरा शरीर वजन हो गया 60 किलो, मेरी गाड़ी उसका 2 टन वजन बढ़ गया, मेरा मकान उसका कितना वजन बढ़ गया, जितने मेरे चिपकाए उतना वजन बढ़ गया। इन सारे वजनों को छोड़ने के लिए बाबा हमें सिखाते कि बच्चे छोड़ दो इनको, तो तुम्हारा हाथों बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। मेरा कहने से ये वजन बढ़ता है, मेरा कहना बंद कर दो, कुछ भी मेरा नहीं, एकदम हल्के हो जाएंगे। जो मेरा कहेगा उसका वजन बढ़ेगा, बाबा कहेगा ही नहीं। एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। हमारा संसार की तरफ आकर्षण ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम आत्मा है तो हमें संसार की कोई चीज नहीं। नई दुनिया में माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, अभी तुम सबका माथा क्या है, बहुत भारी है। फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे, जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है, कौन आया है, बाबा आया है क्या करने के लिए, सबकी सदगति करने के लिए। जब पूरी स्थापना हो जाएगी, जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म, तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप ही करता है, दूसरा कोई कर ना सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और कर्तव्य किसका हो नहीं। बाप है ऊंच से ऊंच, बाप कैसा है, ऊंच से ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच। करण करावनहार है ना, वो करणहार भी है करावनहार भी है। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस दृष्टि से पाप आत्माओं का बोझा उतारने के लिए। ये तो गायन भी है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करना। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं, महात्मा देवता बिगैर कोई होता नहीं, महात्मा देवता बिगैर कोई होता नहीं। यहां तो अनेकों को महात्मा कहते रहते, यहां तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा जाता है स्वर्ग को, वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। और जैसे जैसे विकार आने शुरू हुए तो बनते गए विकारी, और कलयुग में आकर बन जाते हैं संपूर्ण विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय का सुख पाएंगे, अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। जो 100% बनेंगे तो ज्यादा सुख, और बाकी जो भी हैं उससे कम सुख पाएंगे। जितना अपूर्ण, 1 पॉइंट कम है, 2 पॉइंट कम है, 3 कम है, 5 कम है, 10 कम है। स्कूल में भी कोई संपूर्ण और कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत ज्यादा। डॉक्टर सारे डॉक्टर होते हैं ना, परंतु एक डॉक्टर है जिसकी बहुत ज्यादा तनख्वाह है, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और एक डॉक्टर है उसको रोटी खाने के भी है, तो वो भी डॉक्टर, पढ़ाई तो उसने भी वही की है। परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना, सो भी आत्मा सांवरी बनती है, भिन्न नाम रूप देश काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है जिसका और कोई को पता नहीं। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, याद दिला रहे हैं, चाय पिलाई थी मैंने आपको, दूध पिलाया था, टॉफी खिलाई थी, ऐसी याद दिला रहे हैं। क्या रहते थे, जहां पड़े थे पड़े थे, हमें बताया तक नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूं। तुम भाई भाई थे ना, मेरे भक्तों को समझ में आएगी ये बातें, हमें समझ में नहीं आएंगी। वो कहेंगे हाँ हम आत्मा भाई भाई हैं, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था, तुम भाई भाई थे और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में जैसे वहां भाई भाई बन के रहते हो, ना मिल के रहते, ना खाते ना पीते, कोई व्यवहार तो करते नहीं है। तो बाबा झूठ बोलता है ना, उनका पार्ट ही ऐसा है। मुझे रोजाना लिखना चाहिए ये कि क्या क्या झूठ बोला, वरना तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। कितना समय पुकारा, वे भी बाप ने बताया, ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। बाप भी कहते हो, बाप बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं, ये चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट है, सब क्या है, स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है विदेही, ये उनकी देह नहीं है, ये उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है और यहां आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे। सभी रूहों का वे बाप है, भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं, ऊपर में है फूल और युगल मेरु। वे तो एक जैसे ही हैं, फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, ये भी अभी तुमको पता पड़ा है, ये भी तुमको अभी पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं, देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है, देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते। श्री बाबा आकर ब्राह्मणों को बैठकर पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी तुम पढ़ते हो, फिर वही जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की है, बाप ने बच्चों को कितनी सेवा की, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहां तो कोई बाप को भी याद नहीं करते, सतयुग में नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वे फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुल गुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है, सारे सृष्टि चक्र का अके आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ बाप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, तुम जब देवता बन जाते हो तो तुमको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। जब तुम देवता बन जाएंगे तो तुम तीनों कालों को भूल जाएंगे, अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ये ज्ञान नहीं मिलता है। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भी क्या करती है, बुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाता, तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाता कि ब्रह्मा बाबा समझते हो, पढ़ाता है हमें। ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं, ये तो सबसे लास्ट में, ये तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर वन पतित, ये क्या बन गया, जिसके शरीर में बैठे हैं। मार का डर नहीं लगता, से बाबा को जरा भी डर नहीं लगता, कहीं मेरे को बाहर निकाल दे, कितना मतलब पक्का है बाबा। और उसी के शरीर से बैठकर उसी को कह रहे हैं ये नंबर वन पतित बना,
इसी को नंबर वन बना देता,
इसलिए बेचारा खुश हो जाता है, कोई बात नहीं, तू जो मर्जी कह दे, मेरा बाप है, कुछ कर नहीं सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ, सच बता रहा है, इसलिए ब्रह्मा बाबा भी चुपचाप सारी बेइज्जती सुन लेता है। कहता भी उसको है जो सुन सकता है, जो ना सुन सके उसे कहा भी क्यों जाए, बच्चों को तो नहीं कहता, कहता मैं तुम्हें यदि कहूंगा तो तुम तो छोड़ के चले जाओगे, इसलिए बच्चों को तो रोज आना, मीठे मीठे बच्चे को कहता है। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को
किकल का राज नहीं बताएगा।
सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनता है, कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, आयुष्वान भाव, पुत्रवान भाव, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को भी परफेक्ट बनाना, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है, अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है, वरदान धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना, भला में सेवा का मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी अवस्था ऊंची बनाओ, अपने कर्म ऊंचे बनाओ, अपनी दृष्टि ऊंची बनाओ, अपनी वृत्ति ऊंची बनाओ, अपनी दृष्टि वृत्ति से क्या करो, सेवा करो, बोल कर सेवा करनी होती है क्या, मनसा सेवा करो ना, तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा के मार्क्स जमा हो जाती है, धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं, उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा का रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है सच्चे देव से दाता विदाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। दाता कौन है, ये विदाता कौन है और वरदाता कौन है, कौन बता सकता है? ये दाता वरदाता, हाँ जी
दाता यानी कि सुनी और सुनाया।
नहीं भाई जी, नहीं नहीं, ये दाता वो नहीं है। ये बाबा बदल जाता है, कब बदल जाए लोटे, बिना लोटे का क्या बोलते हैं, बिना पेंदे का लोटा है ये। यहाँ दाता का मतलब है बाप, विधाता का मतलब है टीचर, वरदाता का मतलब है गुरु। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो फिर रूहानी मौज में रहेंगे। ठीक है, क्या देता है ये? सातों गुण आठों शक्तियां देता है, इसलिए दाता है, विधाता है। क्या बनाता है ये? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके हमें ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर बना देता है। और वरदाता क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देता है। अच्छा,
दाता विधाता और वरदाता,
हाँ अलग अलग बाबा बदल जाता है, कब बदल जाए पता नहीं लगता इसका। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।